तो श्री कृष्ण के चरणारविंद तक पहुंचे बगैर, श्री ठाकुर जी की प्रीति पाए बगैर, याद रखो वापस आना पड़ेगा, निश्चित आना पड़ेगा। और यहां आना पड़ेगा तो रोना पड़ेगा। मैं नहीं कहता, नानक दुखिया सब संसार दुखालयम, श्रीमद् भागवत जी संसार को दुखालयम, त्रिविध ताप। क्यों क्यों एक बालक जब जन्म लेता है संसार में तो एक ही क्रिया सब बालक क्यों करते हैं, रोते ही क्यों है, कोई हंसता क्यों नहीं, क्यों? क्योंकि आते ही संसार के त्रिविध ताप स्पर्श करते हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक, ये तीन ताप संसार में हैं। और ये तीनों ताप जीव जब संसार में आता है आते ही उसको छूते हैं, आते ही माया विकराल रूप धारण करके खड़ी होती है कि अब ये मेरा ग्रास बनने आ गया, और उसके भयंकर रूप को देखकर जीव घबराता है, इसलिए रोता है। कोई तुलसीदास जैसा जब संसार में आता है तो हंसता है, क्योंकि उसको भय नहीं होता, वो उधर से उसका हुआ हुआ आता है, संत भगवान के होकर आते हैं इसलिए नहीं रोते, नहीं तो हर जीव को रोना है। और इन तीनों तापों का निवारण, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्, त्रिविध ताप का निवारण अगर करेंगे तो श्री ठाकुर जी करेंगे। अगर आपको सदा के लिए सुखी होना है, सदा सदा के लिए सुखी, और हो सकते हो बहुत थोड़े में, इस कली काल में तो भगवान ने बहुत छूट दी हुई है, केवल हरि नाम बस, और जपने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जप तो जो भावना भावित होकर किया जाए उसको जप कहते हैं, आप रट लीजिए। और कल्याण करना भगवान नाम का स्वभाव है, जिस तरह एक अंगारे पे आप प्रेम से पांव रखो, क्रोध से रखो, भाव से रखो, कुभाव से रखो, स्वभाव से रखो, वो तो अपने स्वभाव अनुसार आपको जलाएगा, ऐसे भगवान नाम कैसे भी लो कल्याण होगा। भगवान नाम की महिमा कि जो परम पूज्य से डोंगरे जी महाराज तो कहते थे 3 घंटा दिन में जो भगवान नाम ले कली उसका स्पर्श नहीं कर सकता। और क्या मुश्किल है, चिंतन करो, कोई भी तरीका, आप थोड़ा सा श्रम आपको पहले करना पड़ेगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास और कौन सा अभ्यास, कोई समाधि लगाने का अभ्यास नहीं कह रहा, केवल इस बात का अभ्यास, बार 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 कोशिश करिए, फिर एक समय ऐसा आएगा जब प्रभु को आपको याद करना नहीं पड़ेगा, आपको याद आने लगेंगे, एक समय ऐसा आएगा उनसे अपनापन हो जाएगा। और जिस दिन हृदय में ये प्रेम का अंकुर फूट गया, जिस दिन सत्संग में पड़ा बीज फलीभूत हो गया, उसके बाद देर नहीं लगेगी उसको छायादार वृक्ष बनने में। वेद कहता है ना, रसो वैसा, वेद भगवान का क्या निरूपण करता है, वेद कहता है कि वो रस है बस, न वो राम है, न कृष्ण है, न शिव है, न कोई और है, वो रस है। और पक्षपात तो नहीं करना चाहिए, लेकिन सरस तो एक ठाकुर जी है जो हर संबंध स्वीकारने को तैयार है, जो मधुर है, अखिल सौंदर्य रसामृत सिंधु है। हर संप्रदाय में जितने भी वैष्णव संप्रदाय हुए हैं उनमें सब में ठाकुर जी की अलग अलग रूप की उपासना है, और हमारे श्री राधा वल्लभी संप्रदाय में ठाकुर जी के रूप की उपासना है। हम प्रभु को इसलिए नहीं ध्याते कि वो परब्रह्म है, हम इसलिए नहीं ध्याते कि वो श्री कृष्ण है, पुराण पुरुष है, परात्पर परब्रह्म है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, हम इसलिए नहीं ध्याते सर्वशक्तिमान है, हम इसलिए भी नहीं ध्याते कि वो कलिमलहरण है, हम इसलिए ध्याते कि वो सुंदर हैं, सलोने हैं, प्यारे हैं, मनमोहन हैं, जो मन जन्म जन्म से इस संसार के विषय भोग की विष्ठा खा रहा है, वो उनका रूप ऐसा है कि देखते ही सहज उनमें लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता। जो लोग सेवा करते हैं वो सेवा का सुख जानते हैं। सेवा करने वाले व्यक्ति को होता है, अब मुझे ठाकुर जी को उठाना है, अब नहलाना है, अब खिलाना है, अब फिर सुलाना है, अब फिर जगाना है। और जो मन अनेक 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 साधनों से भी, प्रयत्नों से भी नहीं लगता उनमें, वो उनकी कृपा से, उनकी सेवा से सहज उनमें लगा रहता है। गोपियां कहती थी, लाला थोड़ी देर के लिए हमारे ध्यान से चलो जायो कर, घर में रोज झगड़ो है जाए, दाल में नमक की जगह मीठो पड़ जाए, दूध में मीठे की जगह नमक पड़ जाए, क्योंकि ध्यान में तो लाला तू रहे। क्या सौभाग्य उन ब्रज गोपिकाओं का जो प्रभु से कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए तो हमारे ध्यान से चला जाया कर, थोड़ी देर के लिए तो आंखों से निकल जाया कर। और स्वभाव इनका ऐसा है, एक बार मन में आ गए, एक बार फंस गए, एक बार धस गए। जैसा कि एक बार एक गोपी ने कहा, आज आवेगा ना तो बांधूंगी, क्योंकि यशोदा मानती नहीं मेरी बात कि लाला इतना उत्पात करे। तो माने पूरी तैयारी कर ली, आज जब लाला आवेंगे तो आए के बांध लेंगी। तो जो समस्त जो केवल अपने स्मरण मात्र से, क्षण मात्र के स्मरण से भव भव का बंधन काटने वाले, उनको कौन बांध सकता है। तो गोपी की बात तो उल्टी पड़ गई, जो तैयारी उसने लाला को बांधने की करी थी वहां लाला ने उस गोपियां ही बांध दियो। और जब पूरे घर में उत्पात मचा के, कोहराम मचा के, हल्ला गुल्ला मचा के जाने लगे, तो बोली, अच्छा जो तैने कर लियो सो कर लियो, अब मोए खोल तो जा। तो मुस्कुरा के कहते हैं, बोले अरे पगली, मोए बस बांधनो आवे, खोलनो ना आवे। तो एक बार बांध लेंगे ना आपको, एक बार जकड़ लेंगे आपके अपने जाल में, फिर आप चाहोगे भी तो नहीं छूट पाओगे, वो चाहेंगे तो भी नहीं छुड़ा सकेंगे। स्वभाव है उनका, एक गिलास पानी आप समुद्र में जाके डाल दीजिए तो वो समुद्र में ऐसे मिल जाएगा कि समुद्र भी चाहे तो उस पानी के गिलास को अलग नहीं कर सकता। बस केवल, और जो गीता में भगवान ने कहा ना, अभ्यास है तु कौनते, अभ्यास सिर्फ इस बात का, बार 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 मन को समझाइए कि प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं। और वैराग्य ऐसा नहीं कि अपना मुंड मुंडा के घर से भाग जाना है, ना 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 ना, ऐसा वैराग्य नहीं। प्रभु से राग, प्रभु से प्रेम इज इक्वल टू संसार से वैराग्य। आप संसार को छोड़िए मत, नहीं छोड़ पाओगे। मैं कह दूं कामना छोड़ दो, क्रोध करना छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, मोह छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, इसमें से कुछ नहीं छूटेगा, क्योंकि ये मिट्टी के दिए नहीं है, यही तो हम हैं। आप सोचो मन क्या है, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, इन्हीं पांचों से मिलकर ही तो मन बना है। और ये पांचों विकार जब भगवत विषयी हो जाते हैं, ये पांचों विकार जब भगवत विषयक हो जाते हैं तो कल्याण करा देते हैं। क्यों क्यों ठाकुर जी ने ऐसे नहीं कहा कि मोहे कपट न भावा, क्रोध न भावा, सिर्फ एक चीज, मोहे कपट छल छित्र न भावा। कपट छल नहीं भाता उनको, बाकी किसी चीज से गुरेज नहीं है। तो मैं नहीं कहता कि तुम संसार छोड़ो, मत छोड़ो, छोड़ने का प्रयत्न भी मत करना, आप ठाकुर जी को पकड़ो। देखो, सोचो, चिंतन किया करो कि मेरा मन संसार में कौन कौन सी जगह ज्यादा लगा है। अगर किसी के रूप में ज्यादा लगा है तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, क्योंकि तेरे जैसा सोना ते होर नहीं होना, कोई हो नहीं सकता। किसी के गुण में फंसा है तो बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि गुण निधान है, सकल गुण निधान। और यही दो चीज ऐसी है जहां मन फंसता है। तो अपने मन को यह समझाओ कि जहां तो इस गंदी नाली के जल से संतुष्ट हो रहा है, वहां देख कृपा का समुद्र बह रहा है, अमृत का समुद्र बह रहा है। और ये मन का स्वभाव होता है कि उसको जिस चीज के संपर्क में ज्यादा देर रखा जाए वो उसी का चिंतन करने लगता है। अब जन्म जन्म से संसार में है, जन्म जन्म से संसार का चिंतन करता है, जन्म जन्म से विषय का चिंतन करता है, इसलिए विषयी हो गया है। और देखना, एक दिन मिलाएगा तो यही मन ही मिलाएगा उनसे, क्योंकि जब आएंगे तो भाव में आएंगे सबसे पहले, जब उनकी कृपा आपको स्पर्श करेगी तो भावना में करेगी। और हमारे वृंदावन की रस रीति तो खास तौर पे ये बात सिखाती है, सब जगह देखने के चक्कर में मत पड़ो, सब जगह भगवान ने सब, हाँ होगा, तुम्हारा क्या फायदा है उससे, मेरा तो नहीं होता। अब मान लो हम तो, आज मैंने तुम्हें बता दिया और कोई नई बात थोड़ी बताई है, आप सब जानते हो, इतने से बालक से पूछो उसको भी बताया था भगवान तो सब जगह है, फिर भी मन में कष्ट है, पीड़ा है, क्लेश है। और अगर सब में है फिर क्यों लड़ाई झगड़ा होता है, क्यों आज संसार में इतनी मारकाट मची है? क्योंकि वो केवल उसका जानने योग्य स्वरूप है, मानने योग्य नहीं है, पहचानने योग्य नहीं है। इसलिए उस चक्कर में मत पड़ो, केवल इनको अपना बनाओ, इनसे संबंध बनाओ, फिर जीवन बदलेगा। प्रेम हुए बिना परिवर्तन नहीं आएगा, और प्रेम इनके सिवा किसी से हो ही नहीं सकता। आज आप यहां जितने लोग बैठे हैं सब ईमानदारी से यहीं बैठे बैठे अपने मन में चिंतन करिए, चित्त में चिंतन करिए, सोचिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो संसार के संबंधों से संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, बिल्कुल प्रफुल्लित हैं, एक भी नहीं। मैंने कहा ना, हंसता संसार में वो है जो उसका हो जाता है, बस, बाकी सब रोते हैं, सब। एक चपड़ासी से लेकर प्रधानमंत्री तक सब रोते हैं। केवल दुख का रूप बदलता है, कष्ट का रूप बदलता है, पीड़ा का रूप बदलता है, सब रोते हैं। और इसमें कोई नई बात नहीं, कोई विशेष बात नहीं है, हंसता सिर्फ वो है जो इसका हो जाता है, जो इसका हो के रहता है। भक्त उस मोती की तरह होता है जो जल में जन्म लेता है, जल में ही रहता है, लेकिन जल में रहता हुआ भी जो जल नहीं होता, भक्त भी संसार में ही जन्म लेता है, भक्त भी संसार में ही रहता है, संत भी यही रहता है, लेकिन संत संसार में रहता हुआ संसार का नहीं होता। और कहीं किसी तरीके से ये सब बातें न समझ में आए तो मोटी मोटी एक बात समझने का प्रयत्न करो कि मुझे आज से ठाकुर जी को पकड़ना है बस, और बड़े प्रेम से, बड़े सहजता से पकड़ में आ जाएंगे, सच मानना। संतों का चिंतन है कि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, इन चारों में से किसी भी एक के साथ जुड़ने से भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। अब आप देखिए, आपको जो सहज लगता हो, जो बिल्कुल सरल लगता हो, उसके साथ जुड़ जाइए। आपको नाम से जुड़ना सरल लगता हो तो नाम से जुड़ जाइए, रूप से, आपको रूप का चिंतन करना अच्छा लगता हो, रूप से जुड़िए। हमारे गोस्वामी जी महाराज आचार्य स्वरूप श्री राधा वल्लभ जी मंदिर के, वो कई बार हम लोग बैठे थे तो कहा करते हैं कि ठीक है आप लोग गिरिराज परिक्रमा करते हो, वृंदावन की परिक्रमा करते हो, कभी कभी इनके सामने बैठ के इनके रूप की परिक्रमा किया करो, चरण से लेकर मुकुट तक, फिर मुकुट से फिर चरण तक, फिर चरण से मुकुट तक, और जब थक जाओ ना तो कहीं कहीं पे भी बैठ के आराम कर लो, कभी हाथ के कंगन पे आराम कर लो, कभी कंठ के हार पे बैठ के आराम कर लो। रूप की परिक्रमा किया करो, निहारा करो, आंख से पीने की कोशिश करो, और जिस दिन उनके रूप की माधुरी में, जिस दिन उनके रूप के जाल में ये मन उलझ गया, रस खान ने कहा ना कि पूर्ण पुण्य न ते रस खान जी मोहनी मूरत आन निहारी, और चारों दिशान की ले छवि आन के झांके झरूखे में बांके बिहारी, जिसे समस्त सुंदरता सिमट कर आ गई हो। अरे कितना भाग्य, कितना सौभाग्य होता है जीव का जो उसे श्रीधाम वृंदावन जाना होता है, और मैं देखता हूं पर्दा खुलता है और हम लोग भीख मांगने शुरू कर देते हैं ठाकुर जी से। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कहते हैं बिन मांगे आगे आएगा, अरे जो प्रारब्ध में लिखा कर आए वो वैसे भी मिलेगा। तो उनके सामने खड़े होने का जो देव दुर्लभ संयोग मिला है उसको यूं भीख मांग के क्यों गवा देते हो? जब पट खुले तो आनंद से कहा करो, आहा पायल की झनकार की जय हो, आपकी मुस्कन रसाल की जय हो, तिलक भाल की जय हो, चितवन रसाल की जय हो। फिर से याद आती है श्री डोंगरे जी महाराज की बात, वो कहते थे तुम ठाकुर जी की जय बोलोगे संसार में तुम्हारी जय होगी। प्रकृति जो है वो तो उनके चरणों की दासी है, क्यों प्रकृति संतों के अनुकूल होती है? उसके प्यारे जो होगा प्रकृति अनुकूल हो जाती है, आपकी सदा सर्वदा जय होगी संसार में। कोई आज तो कोई कल, कोई परसों तो कोई आने वाले परसों को, कोई गया तो कोई जाएगा, कौन किसको याद करता है? कोई मीरा जैसा, कोई तुलसी जैसा, कोई सूर जैसा, जो आता तो चाहे कैसे भी हो लेकिन जाता उसका होकर है तो जगत याद करता है, याद कर करके सुखी होता है, आनंदित होता है। आज जब कोई उसके प्रेम के मार्ग पे चलने लगता है तो मीरा की कही एक एक बात उसके लिए जीवन पथ का काम करती है, प्रकाश स्तंभ का काम करती है। जब कोई नया नया चलने लगता है और संसार की प्रतिकूलता आती है तो अगर कहीं मीरा का ये पद कान में पड़ जाए, मैं अपना अनुभव कह रहा हूं आपसे, कि जब मीरा जी से एक बार उनकी ननद ने आकर कहा कि तुम्हारे पति तो जैसे तैसे थे, उन्होंने तो तुम्हें सहन कर लिया, लेकिन अब ये तुम्हारा जो देवर बैठा है ना, इसका स्वभाव तुम जानती नहीं, इसलिए अब भी मार्ग पर आ जाओ और ये साधुओं के बीच में नाचना गाना छोड़ दो, तुमने तो हमारे कुल की मर्यादा तक नष्ट कर दी। तो मीरा जी मुस्कुरा कर कही कि राणा जी रूठो मारो काई कर लेसी, मैं तो गोविंद गुण गा स्यारी माई। राजा जी रूठे अपनी नगरी रखासी, हरी रूठा किठ जा स्यारी माई। एक प्रेम का बल जिसने मीरा को इतना बली बना दिया कि जिस समय स्त्रियों को यहां से घूंघट तक उठाने की आज्ञा नहीं थी और मीरा गली गली नाची, मीरा गली गली गाई। हम लोग कल बैठे थे कथा के बाद, किसी से चर्चा हो रही थी तो मैंने कहा कि मैंने गाते तो हजारों आदमियों को सुना है कीर्तन में बैठ के, सत्संग में बैठ के, कि मैं ता गोविंद गोविंद गांधी फिरा और अपने मोहनु मना दी फिरा। और मैंने वृंदावन में हजारों आदमी लाखों आदमी देखे हैं दर्शन करते, एक भी मुझे ऐसा नहीं मिला जो गोविंद गोविंद गाता पागलों की तरह घूम रहा हो। मुझे तो आज तक एक भी ऐसे भक्त के दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला, एक भी नहीं। और क्या मस्ती होगी, क्या आनंद होगा मीरा का, गली गली गाती घूम रही है, डंके की चोट पर कह सकती है हाँ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। और हम कितने दीन, कितने हीन, कितने हीन कि रास्ते में कहीं गाड़ी चलाते कहीं पीर की मजार आ जाए ना तो वहां भी माथा झुक जाता है, नहीं झुकाए तो पता नहीं पीर बाबा जैसे हमारा क्या बिगाड़ लेगा। अरे आप ठाकुर के हो, आप उसके हो, उसके हो के रहो। अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। क्षमा करना, जो दर दर पे झुक जाए उसको सर नहीं कहते। दस जगह पर जो अपने मन को लगाए या थोड़े से खराब शब्दों में, व्यासपीठ की मर्यादा तो नहीं है पर फिर भी जो दस व्यक्तियों से प्रेम करे उस स्त्री को क्या कहा जाता है वो आप सब जानते हैं। प्रेम एक से होता है, एक से होगा और एक से ही हो सकता है और वो है ये, बस आज समझ लो, कल नहीं तो अगले जन्म में किसी भी जन्म में मान के कि जीवन में आनंद, जीवन में सुख, विश्राम, चैन तब आएगा जब ये आएंगे। एक मिनट के लिए भगवान नाम लेकर आइए आज हम कथा में प्रवेश करें। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। सब कहना
आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी।
कीर्तन करते करते थोड़ा सा आगे आगे हो जाओ। ताली बजाना मत छोड़ो। एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं कि कीर्तन में क्यों ताली बजाने पे जोर दिया जाता है। आप देखो, बहुत भीड़ हो, आपको किसी को बुलाना हो, तब पहले इशारा करते हैं, वो नगर नहीं देखता, फिर आप उसका नाम लेते हैं, वो नाम लेके भी नहीं देखता, फिर आप कहते हैं सुनिए, एकदम से सुन लेता है ना। अब आप भीड़ बैठी है, आपका इशारा हो सकता है वो ना देखें, आप नाम लो तब भी ना सुने, ताली बजाओ हो सकता है आपकी पर नजर पड़ जाए।
श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी,
मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल।
श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी।
दो ऐसा संकेत कछु मेरा होवे हृदय विभोर, होवे हृदय विभोर।
केशव कलिमल हरण नाम का मिले सहारा। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल, हे गोपाल,
एक भी यहाँ पे कथा से ही सुन रहा अच्छे से। मैंने कहा था तुम ठाकुर की जय बोलोगे तुम्हारी भी जय होगी, और आप ऐसे जय बोल रहे हो जैसे कई दिनों से खाना ही नहीं खाया हो तुमने। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जिनके कृपा से, जिनके कर्म से, जिनकी दया से, जिनकी मेहर से आज हम वृंदावन बिहारी लाल का नाम लेकर यहाँ आनंदित हो रहे हैं, उन रसिक अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, आप ललिता सखी का अवतार माने जाते हैं, श्रृंगार रस की उपासना के आप आचार्य हैं, और आपका वर्णन करते समय भक्तमालकार कहते हैं युगल नाम सो नेम और जपत नित कुंज बिहारी, कि आपको एक श्यामा श्याम के नाम का ही नेम था बस। जैसा मैंने निवेदन किया था ना, एक तो होता है भगवान को भी भजना, भगवान से भी प्रेम होना, एक होता है भगवान से ही प्रेम होना। स्वामी जी ऐसे आचार्य हुए, स्वामी जी ऐसे संत शिरोमणि हुए, स्वामी जी ऐसे रसिक अनन्य हुए कि जिनको केवल कुंज बिहारी से ही प्रेम था। भोर भय से सांझ ढले लो, बस सेवा को ही नेम हमारो, बस सेवा को, जिन्हें सेवा का ही नियम। भक्तमालकार कहते हैं उत्तम भोग लगाएं और मोर मरकट को पोषें। श्री बिहारी जी की प्राकट्य, श्री बिहारी जी के आने की कथा यहां से आरंभ करूंगा। श्री वृंदावन में श्री निधिवन के स्थान पर श्री हरिदास स्वामी भजन करते थे, और उस समय तक कई रसिक शिरोमणि, कई रसिक संत आपके शरणागत होकर नित्य निकुंज की उपासना का रस प्राप्त कर चुके थे। ये जो निकुंज रस की उपासना है, निभृत निकुंज की जो उपासना है, इस उपासना का जो प्राण दंड है, जो मेरुदंड है, वो है अनन्यता। किसकी? श्री राधा रानी के चरणों की। केवल श्री किशोरी जी की सखी भाव भावित जीवात्मा का ही इस उपासना में प्रवेश होता है, उसके अलावा किसी का भी नहीं। केवल इसी भाव से इस रस को प्राप्त किया जाता है। एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए, और इस उपासना के श्री स्वामी जी परम अधिकारी हुए। आपकी कृपा से अनंत अनंत जीवों ने श्री प्रिया जी के श्री चरणारविंद को प्राप्त किया, जिनके श्री चरणारविंद की एक नख का दर्शन ब्रह्मादिकों के लिए दुर्लभ है। और आपकी कृपा से, श्री स्वामी जी की कृपा से अनंत अनंत जीव अब तक श्री प्रिया जी की सेवा का सुख प्राप्त कर रहे हैं। तो श्री स्वामी जी का एक नित्य का नियम था कि निधिवन की एक लता कुंज को स्वामी जी रोज दंडवत प्रणाम करते थे। तो स्वामी जी के जो शिष्यगण थे वो बड़ा आश्चर्य करते थे कि एक इस लता कुंज में क्या ऐसा विशेष है कि स्वामी जी रोज यहां दंडवत प्रणाम करते हैं। तो किसी का उनसे पूछने का साहस नहीं हुआ। स्वामी जी के सबसे प्रिय और सबसे बड़े शिष्य थे श्री विठल विपुल देव जी। सब शिष्यों ने उनसे कहा कि हम तो नहीं पूछ सकते, लेकिन आप इस रहस्य को जानने की कोशिश करिए, प्रयत्न करिए। तो एक दिन बड़ी हिम्मत जुटाकर, बड़ा सामर्थ्य जुटाकर, साहस जुटाकर श्री विठल विपुल देव जी ने श्री स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए पूछा, प्रभु आप नित्य मानसी सेवा में बैठने से पहले, ध्यान में बैठने से पहले इस लता कुंज, इस लता भवन को प्रणाम करते हैं, क्या रहस्य है? पहले तो स्वामी जी ने कुछ नहीं कहा, टाल मटोल कर दिया। लेकिन जब उन्होंने फिर से पूछा, प्रेम से थोड़ा सा आग्रह करके पूछा, तो स्वामी जी ने पहले तो उनको कृपा करके दिव्य दृष्टि प्रदान करी। और फिर कहा कि जाओ इस कुंज भवन को प्रणाम करके जाके भीतर निहार आओ। तो विठल विपुल देव जी ने लता कुंज के बाहर दंडवत किया और भीतर जाकर क्या देखते हैं कि अनंत अनंत सूर्य चंद्रमाओं की के प्रकाश को तिरस्कृत कर देने वाला है, क्षीण कर देने वाला, अनंत अनंत चंद्रमाओं की कांति जिसके सामने तुच्छ है, शुद्र है, ऐसे रंग महल में अद्भुत रत्न जटित मणि जटित शैया पर प्रिया प्रीतम विराजमान है और स्वामी जी सखी भाव से वहां उनकी सेवा कर रहे हैं। तो विठल विपुल देव जी से वो जो दृश्य था वो ज्यादा देर तक उसको देख नहीं पाए और एकदम बाहर आ गए। बाहर आकर देखा तो स्वामी जी अपने रूप में वहां विराजमान थे। तो स्वामी जी ने कहा, देखा है कि मैं क्यों प्रणाम करता हूं? तो श्री किशोरी जी के रूप की आभा से उनकी आंखें इतनी चुंधिया गई, मन थोड़ा सा शिथिल हो गया, तन की गति थोड़ी सी क्षीण पड़ गई और कुछ मुंह से कह नहीं सके, कंठ भर आया, आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। स्वामी जी ने कहा कि अब एक बार पुनः जाओ। स्वामी जी ने मन में ये विचार किया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सोचे कि पता नहीं कहीं कोई कल्पना थी, स्वप्न था या क्या था। तो उनके हृदय के विश्वास को दृढ़ करने के लिए, निश्चित करने के लिए स्वामी जी ने कहा एक बार पुनः जाके भीतर निहार आओ। तो विठल विपुल देव जी पुनः थोड़ा साहस जुटाकर फिर दंडवत प्रणाम करके जब भीतर गए तो उनके देखते ही देखते क्या हुआ, जो मणि जटित रत्न जटित सुवर्णमयी शैया पर प्रिया प्रीतम विराजमान थे और स्वामी जी जल की झारी लेकर सखी स्वरूप में वहां खड़े थे, तो श्री स्वामी जी का इशारा, स्वामी जी का संकेत पाते ही वो प्रिया प्रीतम दोनों मिलकर एक युगल स्वरूप हुए और श्री वृंदावन बिहारी लाल के रूप में श्री विठल विपुल देव जी उनको लेकर बाहर आए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। स्वामी जी ने उनके बाहर आते ही लपक कर अपने प्राण धन को, जीवन सर्वस्व को हृदय से लगा लिया।